मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 13 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं रिंकू शर्मा जयपुर राजस्थान से, रमेश बमनिया आप हैं सिरोही राजस्थान से ही हैं, अब्दुल लतीफ आपका जो गांव है वो है छावनी पाडरौना, जिला है कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बीरूराम आपका गांव है चिंतामनपुर, जिला है कैमूर भाबुआ बिहार से, त्रिलोकीनाथ यादव आपका जो गांव है वो है हुसैनपुर, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, बबीता यादव पूरे भारथा उत्तर प्रदेश से, और सौम्य सुचारिता जेना आप हैं बारीपाड़ा ओडिशा से। तो रिंकू, रमेश, अब्दुल लतीफ, बीरू, त्रिलोकीनाथ, बबीता और सौम्य सुचारिता आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम किस पर बात करने जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्या मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि मैं किस पर बात करूं और क्या आप मुझे सटीक उत्तर दे सकते हैं? मुझे मालूम है कि आप सटीक उत्तर दे सकते हैं और मैं पूछूंगा तो आप सटीक उत्तर देंगे और आपका उत्तर यही होगा कि सर, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच अभी जो समझौता हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। आप अगर आप सच में यही उत्तर देने वाले थे मित्रों तो आप बिल्कुल सही हैं। मुख्य विषय के रूप में हम लोग इसी पर बातें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी दूसरी न्यूज एनालिसिस के तहत दूसरे समाचारों को लेकर के और मैं आपको उसकी बारीकियों से परिचित कराना चाहूंगा, उनकी बारीकियां क्या होती हैं जो सिविल सर्विस में बहुत जरूरी हैं। फ्रेंड्स, इस बार का जो सिविल सर्विस का प्री का पेपर था, बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन था, कुछ लोग कहते हैं नहीं सरल था, कुछ लोग कहते हैं मॉडरेट था। चलिए, अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से लोग उसका विश्लेषण करते हैं। मैं उसे नो डाउट कि सरल ही मानता हूं। अभी तक जो भी एग्जाम पिछले 5-6 साल में हुए हैं उनकी तुलना में इस बार का पेपर बहुत सरल था, लेकिन बहुत लोग मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं रखेंगे, मैं जानता हूं। तो सीधी सी बात है कि सबके अपने अपने मापदंड हैं और उन मापदंडों का जो आधार होता है वो हमारी अपनी प्रिपरेशन होती है। तो दोस्तों, किसी को सरल लगता है, किसी को कठिन लगता है, जबकि दोनों ही साल साल दो दो साल से तैयारी कर रहे हैं, डेली 8-8, 10-10 घंटे पढ़ भी रहे हैं, जो किताबें सजेस्ट की जाती हैं वही पढ़ रहे हैं, याद करते हैं, फिर भी ये सरल कठिन क्यों है? या तो सरल हो या कठिन हो, ये दोनों क्यों है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा और उसी उदाहरण के तहत फिर मैं आज कुछ घटनाओं को लेकर, कुछ समाचारों को लेकर के आपसे बात करूंगा। आपको ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन आया था अभी 2018 के एग्जामिनेशन में संविधान के 9th शेड्यूल के बारे में, संविधान का 9th शेड्यूल, 9वां परिच्छेद। अब ये जो 9th शेड्यूल है, संविधान में इतने शेड्यूल हैं, आपको लग रहा होगा कि यार किसको किसको पढ़े, किसको किसको समझें, तो बहुत से स्टूडेंट ने इसे कठिन माना, जबकि ये बहुत सरल है। सरल इस मायने में नहीं है कि इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही, सरल इस मायने में है कि अगर आप करंट अफेयर्स से थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं तो 9th शेड्यूल पर बहुत चर्चा हुई है। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल होता है कि अगर किसी भी अपने बनाए हुए कानून को सरकार 9th शेड्यूल में डाल दे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है उसको रिव्यू करने का, तो उस अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो जाता है, राइट? तो बीच में ये बात चलने लगी थी, सरकार इस कोशिश में थी कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दे तो फिर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर अपने ढंग से आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकेंगे। इस पर बहस होती रही और इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि फिर आप किसी भी कानून को उठा करके 9th शेड्यूल में डाल दें और उसे कोर्ट की परिधि से बाहर कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इस पर एक बहस चली थी, लंबी बहस चली थी, लेकिन सवाल यह है कि जो स्टूडेंट कठिन कह रहा है वो उसने इसे पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर वो डेली अखबार पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसने इसे पढ़ा होगा, और अगर उसे इसने पढ़ा है तो फिर ये मिस क्यों हो गया? उसे मालूम होना चाहिए था, क्योंकि एक दिन की बात नहीं थी कि यह घटना एक दिन में घटित हुई और उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गई। आप देखिए कि जो उसमें शहरों के नाम हैं, कैटलोनिया का नाम है, अलेप्पो का नाम है, लगातार अखबार में आते रहे, नहीं कि एक दिन आए और गायब हो गए, ऐसा नहीं, लगातार आते रहे हैं। सवाल यह है कि चीजें आती रहती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सामान्य रूप में देख करके और आगे निकल जाते हैं, और बस यही हमारी सिविल सर्विस की तैयारी का सबसे खतरनाक पक्ष होता है, और फिर हमें वो सरल सी चीज भी बहुत कठिन लगने लगती है, राइट। तो जैसे कि अभी अगर आपने कल के समाचार सुने हो, तो कल के समाचार में देखिए कि दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है और उसमें वो सारे मंत्रालयों का रिव्यू करेंगे, ये वाक्य था। अब जब आप सुनते हैं कि मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, तो पता नहीं फिर आपके दिमाग में ये कौंधता है या नहीं कौंधता है कि यार ये मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया, इंग्लिश में जब आप सुनेंगे तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया गया, अभी तक तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग होता था, कल बुलाई है का मतलब आज मतलब ये कल की खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो आज है वेडनेसडे और आपको मालूम है कि वेडनेसडे को बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, ये आपको मालूम है, और इसलिए आप बुधवार के न्यूज को देखिए शाम को डीडी न्यूज, तो आपको लगातार मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया, तो आपके दिमाग में एक कौंधना चाहिए कि अरे अभी तक तो ये मंत्रिमंडल की बात होती थी, ये मंत्रिपरिषद क्या हो गया, और फिर आपको अच्छे से देखना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए कि ये मंत्रिपरिषद क्या है और ये मंत्रिमंडल क्या है, तब जाकर के इनफैक्ट सही ढंग से तैयारी हो पाती है। इसी तरह से एक खबर आपने सुनी कल की, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, वो संसद की स्थायी समिति के सामने प्रस्तुत हुए, संसद आप पढ़ते हैं, संसद आप जानते भी हैं, लेकिन संसद की स्थायी समिति क्या है, इसके सामने रिजर्व बैंक का गवर्नर प्रस्तुत क्यों हो रहा है, क्या सच में इसके पास इतने पावर्स हैं? तो आपको बकायदे जो स्थायी समितियां हैं संसद की, और केवल स्थायी समिति ही नहीं, आपको संसद की जो हमारी समिति की प्रणाली है इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। आप दो साल पहले का पेपर उठा करके देखिए, प्री का पेपर, उसमें ये पूछा गया था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लेकिन सार उसका यह था कि गन्ने की कीमतें बढ़ाई गई थी किसानों के लिए, जैसे अभी गन्ने के बारे में प्रॉब्लम चल रही तो बहुत साल से चलती रहती है, तो उसमें यह पूछा गया था कि गन्ने की जो कीमत बढ़ाई गई है या गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, कुछ इसी तरह का प्रश्न था, तो उसका निर्धारण निम्न में से किसने किया या डिसीजन किसने लिया, और उसमें फिर चार के नाम दिए थे, जो भी नाम दिया मुझे विकल्प याद नहीं है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति। तो बट नेचुरल है कि जो जब गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया होगा और जब ये न्यूज अखबारों में आई होगी, तो बकायदे ये बात सामने आई होगी कि ये निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति सलाहकार समिति ने लिया है। तो हम जब इन बारीकियों पर थोड़ा सा नजर रखते हैं या कह लीजिए ध्यान देते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, और जब भी आप ऐसा कोई जुमला सुने, शब्द सुने, तो आपको चाहिए कि आप बकायदे किताब से उसे कंसल्ट करें, तब जाकर के सिविल सर्विस की सही मायने में तैयारी हो पाएगी, और यही तो वह प्रक्रिया है तैयारी करने की, जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन कठिन होता है। अदरवाइज क्या कठिन है, सिलेबस है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के उत्तर आप कहां से लाएंगे, इसे जानना और लाना, यही इसे कठिन बनाता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये मुझे आपसे विशेष रूप से चर्चा करनी थी, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्थायी समिति और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के अंतर के बारे में बताता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से मेहनत करें और बकायदे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। मित्रों, अब मैं अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच जो समझौता हुआ है उस पर आता हूं, और मुझे नहीं लगता कि इस पर बात करने के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि आज के अखबार स्वाभाविक है कि यह बहुत ही 12 जून आप समझ लीजिए कि 12 जून 2018 की जो तिथि है वो इतिहास में दर्ज हो गई है, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं ये इसे इतिहास के बहुत ही निर्णायक दिन के रूप में इतिहास व विश्व इतिहास में पढ़ेंगी, या विश्व शांति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के तहत इसे एक टर्निंग प्वाइंट मानेंगी। अखबार भरे हुए हैं, कल दिन भर की न्यूज इसी पर बेस्ड थी, टीवी चैनल्स में यही बातें आ रही थी, डीडी न्यूज में भी आपने देखा होगा कि इसी पर ही ज्यादा बात की गई थी, और बकायदे एक्सपर्ट बुलाए गए थे और एक्सपर्ट्स से भी बात की गई है। मित्रों, मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और वो ये कि इस 12 जून को ये मीटिंग हुई है, और 11 जून के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको उत्तरी कोरिया, एक तो कोरिया के बारे में बताया था, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विभाजन हुआ था, दोनों में क्या फर्क है। इसके बाद फिर मैंने जो अभी समस्या है उसके बारे में बताया था कि अभी मूल समस्या क्या है, और मैंने ये कहकर बताया था कि अगर आप इन थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं, जिसे मैं बेसिक्स कहता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने के बाद उसके बारे में जो खबरें छपेंगी, जो लेख छपेंगे, उनको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये बात मैंने आप सबसे कही थी। पहली बात तो यह है कि मैं जानना चाहूंगा कि क्या सच में ऐसा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको होमवर्क के रूप में दे करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिपरेशन का सही मॉडल कम से कम मेरे पास तो यही है, और अब मैं थोड़ी थोड़ी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे इस पर भी आपको गाइड करता चलूंगा, क्योंकि जो सिविल सर्विस की जो गाइडेंस कह लीजिए, या जो टीचिंग ही है कह लीजिए, या जो कोचिंग ही है कह लीजिए, वो मूलतः आपको सक्षम बनाने पर आधारित होनी चाहिए कि आपको सक्षम बनाया जाए, आपको इस लायक बनाया जाए कि आप पढ़ने के तरीके को जान सकें और आप उत्तर लिखना भी समझ सकें। और हमारे 15 दिन की क्लास में हम लोग यही करते हैं, 15 डेज आप समझिए कि सिर्फ इसी पर बात होती है, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। तो वही चीज मैं बहुत ही संक्षिप्त में, हालांकि वो 15 दिन की क्लास और ये डेली ऑडियो लेक्चर का उस रूप में कोई तो हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जो भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, तो मैं इसमें अब इस तथ्य को भी थोड़ा शामिल करने की सोच रहा हूं, और मैंने शुरुआत भी कर दी है, और आप लोगों से रिस्पांस मिलेगा तो उसके आधार पर फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू करने का निर्णय लूंगा। तो पहली बात तो यह है कि आप लोग इस बारे में मुझे सूचित करें। फिर अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो देखिये उसमें एक सवाल उठाया गया है कि ठीक है, चलिए दोनों तैयार हो गए हैं, किस चीज के लिए तैयार हो गए। देखिए, दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विस में आपको यही लेना चाहिए। पहला तो यह है कि उत्तरी कोरिया तैयार हो गया है कि अपने वो परमाणु हथियार जितने भी हैं उनको नष्ट करेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि अमेरिका इसके बदले में उत्तरी कोरिया को आश्वस्त अमेरिका ने किया है कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, और उत्तरी कोरिया जो इतने सारे परमाणु अस्त्र इकट्ठे करता जा रहा था वो खासकर अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि उसको डर लगता था कि कहीं उस पर कोई दूसरा देश आक्रमण करके अधिकार न कर ले। ये दो चीजें होंगी, दो मेन पॉइंट है, दोनों इस पर सहमत हो गए, समझौता हो गया। अब जो डीडी न्यूज में जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने जो अप्रिहेंशन, जो अपनी आशंकाएं व्यक्त की है, वो इस बात पर कि भाई प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा का मतलब है कि जो उत्तरी कोरिया अपने परमाणु हथियार नष्ट करेगा वो किस तरीके से करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका जो उसे प्रोटेक्शन देगा वो किस तरह से देगा। तो अभी प्रक्रियाओं पर बात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं मामला आगे चलकर फंस न जाए, लेकिन वेलकम करने वाली बात यह है कि अगर ये समझौता ही नहीं होता तो फिर आगे की चीज होती कैसे। अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में कर क्या लेंगे आप, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी होती है, कुछ उसी तरह की बात है। तो दोस्तों, चूंकि वक्त हो चुका है, ज्यादा वक्त न तो वक्त है, और सच पूछे तो बात करने के लिए कुछ अभी हमारे पास है भी नहीं। अभी फिर आर्टिकल्स आएंगे इसके ऊपर, तब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो अब इस मुख्य विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब लोग अपने अपने ढंग से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, एकता शर्मा जो ब्यावर राजस्थान से हैं, वीरेंद्र कुमार कान्हेर जो ओडिशा से हैं, विवेक शर्मा दिल्ली से हैं, दीपा बैगा, शुभम अग्रवाल और राहुल कुमार, आप भी ओडिशा से हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।